ओम शांति, ओम शांति। बाबा क्यों आए हैं? आज बाबा ने अनेक उत्तर दिए हैं। मैं क्यों आया हूं? राजयोग सिखाने। और क्या है राजयोग? अपने आप को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, यह है राजयोग। फिर बाबा कहते, मैं तुम्हारा बाप हूं तो मैं तुम्हें प्यार भी देता हूं, वर्षा भी देता हूं, तो तुम उस वर्षे को भी याद करो। तो बाप रूप में बाबा हमें वर्षा देते हैं, प्यार देते हैं, तो हमें जरूर उनको याद भी करना है। फिर टीचर के रूप में बाबा हमें पढ़ाते हैं, तो क्यों आए हैं? टीचर बन करके सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देने। तो हम बाप के सामने भी बैठे हैं, टीचर के सामने भी बैठे हैं। तो टीचर के सामने जब बैठना होता है तो आंखें थोड़ी बंद करनी होती है, झुटके थोड़ी खाना होता है। अगर टीचर के सामने कोई स्टूडेंट बैठा हो, टीचर पढ़ा रहा हो और स्टूडेंट झुटका खाता रहे, तो बाबा कहते ऐसे लगेगा जैसे कोई भांग पी के आया है। हाँ, भांग पी के आते ना, तो ऐसे नशे में होते हैं। तो जैसे भांग पीता, तो नींद का भी एक नशा है। तो जैसे भांग पिया है, आंखें बंद करके बैठा है और झुटके भी खा रहा है, और तो गिर भी सकता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं टीचर के सामने कैसे बैठना होता है, टीचर को देखना होता है ना, ऐसे थोड़ी आंखें बंद करके बैठना होता है। जो पढ़ाता है टीचर, उसको समझना होता है, सुनना होता है, ध्यान से अपने अंदर ग्रहण करना होता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं मैं टीचर भी हूं, सतगुरु भी हूं। तो सतगुरु क्यों आए हैं? टीचर आए हैं पढ़ाने, सतगुरु क्यों आए हैं? हम बच्चों को पतित से पावन बनाकर घर ले जाने। तो इसीलिए बाबा कहते हैं मुझे तीनों संबंधों से याद करो। राजाओं का राजा भी बनाते बाबा, उसके लिए पढ़ाते भी हैं, और फिर पावन भी बनाते हैं, फिर घर भी ले जाते हैं। तो इसी को कहा जाता है राजयोग। कई पूछते राजयोग क्या है, तो आज बाबा ने उसको स्पष्ट किया है। तो सुनते बाबा के महावाक्य आज 9/12/2024 है। मीठे बच्चे, विनाश के पहले सबको बाप का परिचय देना है, नहीं तो अंत में उलहना देंगे, आपने बताया क्यों नहीं। तो विनाश के पहले सबको बाप का परिचय देना है, धारणा कर दूसरों को समझाना है, तब ऊंच पद मिल सकेगा। बस एक ही तरीका है, लक्ष्मी नारायण बनना है, ऊंच पद पाना है, तो क्या करो, बाप का परिचय सबको दो और धारणा करो, दूसरों को समझाओ, तब ऊंच पद मिल सकेगा। प्रश्न है, राजयोगी स्टूडेंट को बाप का डायरेक्शन क्या है? राजयोग सिखाते हैं तो राजयोग सिखाते समय क्या डायरेक्शन देते हैं? उत्तर, तुम्हें डायरेक्शन है कि एक बाप का बनकर, अब मुझे याद तो करो ये राजयोग है, लेकिन मेरा बनकर फिर औरों से दिल नहीं लगानी है। सब संबंध एक के साथ हो जाते हैं तो फिर और किसी से दिल नहीं लगानी है। तो तुम्हें डायरेक्शन है कि एक बाप का बनकर फिर औरों से दिल नहीं लगानी है, प्रतिज्ञा कर फिर पतित भी नहीं बनना है। किसी से दिल भी नहीं लगानी है और पतित भी नहीं बनना है, क्योंकि तुम प्रतिज्ञा भी करते हो। तुम ऐसा संपूर्ण पावन बन जाओ, कैसा संपूर्ण पावन, जो बाप और टीचर की याद स्वतः निरंतर बनी रहे। स्ट्रगल नहीं करना पड़े, युद्ध नहीं करना पड़े, अंदर मुझे बाबा को याद करना है, बाबा को याद करना है, इतना नेचुरल हो, स्वाभाविक हो बाबा की याद। तो तुम ऐसा संपूर्ण पावन बन जाओ जो बाप और टीचर की याद स्वतः निरंतर बनी रहे। एक बाप से ही प्यार करो, उसे ही याद करो, तो तुम्हें बहुत ताकत मिलती रहेगी। शक्ति नहीं है, शक्ति नहीं है, बाबा कहते मुझे याद करो ना, तो ताकत अपने आप मिलेगी। एक बाप से ही प्यार करो, उसको ही याद करो, तो तुम्हें बहुत ताकत मिलती रहेगी। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, समझाते तब है, वो तो निराकार है, तो कैसे समझाएंगे? समझाते तब है जबकि ये शरीर है, जबकि वो ब्रह्मा तन में है, तब हमें समझाते हैं। जबकि ये शरीर है, सम्मुख ही समझाना होता है। जो सम्मुख समझाया जाता है वो फिर बाबा मुरली चलाते थे, फिर इशु दादी लिखती थी अपनी शॉर्ट हैंड बनाकर, और वो ही मुरलियां जो इशु दादी लिखती थी शॉर्ट हैंड में, क्योंकि बोलना तो फास्ट होता है ना, लिखना वही चीज तो फिर स्लो हो जाता है, तो शॉर्ट हैंड करते थे। तो जो सम्मुख समझाया जाता है वो फिर लिखत के द्वारा सबके पास जाता है, ये मुरली। तो लिखत के द्वारा सबके पास जाता है। तुम यहाँ आते हो सम्मुख सुनने के लिए, तो बाबा कहते थे सम्मुख सुनना ये नंबर वन, फिर टेप द्वारा सुनना ये नंबर टू, क्योंकि टेप द्वारा भी हूबहू जो बाबा ने कहा है वो ही सुनते हैं टेप द्वारा भी, लेकिन फिर भी नंबर टू है, क्योंकि टेप में ही सुनते हैं, डायरेक्ट तो नहीं सुनते हैं। फिर बाबा कहते मुरली द्वारा सुनना पढ़ना ये नंबर थ्री हो जाता, क्योंकि उसमें तो कितना एडिट हो जाता है, कितनी बातें सब तो सुना नहीं सकते। बाबा की हर मुरली में जब चलती थी, हर वाक्य के बाद बच्चे 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 मीठे बच्चे मीठे बच्चे, अब वो सब डाले तो पता नहीं कितने पेज बन जाए, तो इसीलिए कितना काटना भी पड़ता है। तो बाबा कहते हैं जो सम्मुख समझाया जाता है वो फिर लिखत के द्वारा सबके पास जाता है। तो तुम यहाँ आते हो सम्मुख सुनने के लिए, बेहद का बाप आत्माओं को सुनाते हैं। जब टेप नई नई निकली थी बाबा को इतना अच्छा लगा, अरे ये तो हूबहू वही रिपीट कर रहा है जो बाबा ने सुनाया है, हूबहू। तो बाबा ने कहा, सब बाबा ने उसको वरदान दिया टेप मशीन को, बाबा ने कहा ये मेरा नंबर वन स्टूडेंट है, ये टेप मशीन ये नंबर वन स्टूडेंट है, और ये पूरा अंदर में धारण कर लेता है और फिर जाकर दूसरों को सुनाता है। तो तो नंबर वन स्टूडेंट बन करके फिर बाबा ने विश्व रतन दादा को कहा, जाओ बच्चे ये टेप मशीन बड़े बड़े सेंटरों पर ले जाओ। तब तो शुरू नया नया निकला था, तो सब सेंटरों पर ले जाओ बड़े बड़े सेंटर्स पर। तो खास कहती हूँ, अरे बाबा की टेप आई है, बाबा से हम टेप में सुनेंगे, बाबा की आवाज सुनेंगे। तो बाबा कहते हैं, तुम यहाँ आते हो सम्मुख सुनने के लिए, बेहद का बाप आत्माओं को सुनाते हैं, आत्मा ही सुनती है, सब कुछ आत्मा ही करती है इस शरीर द्वारा। इसलिए पहले पहले अपने को आत्मा जरूर समझना है। गायन है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो सबसे पहले पहले बाप से कौन बिछड़ कर आते हैं यहाँ पाठ बजाने? बहुकाल का मतलब क्या है, कितना कितना समय हम बाप से बिछड़े? तो सबसे पहले बाप से कौन बिछड़ कर आते हैं यहाँ पाठ बजाने? तो तुमसे पूछेंगे, कितना समय तुम बाप से अलग रहे हो? तो क्या जवाब देंगे, कितना समय हम बाप से अलग रहे? 5000 साल। तो तुम कहेंगे 5000 वर्ष पूरा हिसाब है ना, यह तो तुम बच्चों को पता है कैसे नंबर वार आते हैं। बाप जो ऊपर में थे वो अभी नीचे आ गए हैं, वो भी अभी नीचे आ गए हैं। तुम सब की बैटरी चार्ज करने क्यों आ गए हैं? सबकी बैटरी चार्ज करने। अभी बाप को याद करना है, अभी तो बाप सम्मुख है ना। भक्ति मार्ग में तो बाप के ऑक्यूपेशन का पता ही नहीं था, नाम रूप देश काल को जानते ही नहीं थे। कौन है भगवान, कहाँ है, कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, कुछ पता नहीं था। तुमको तो नाम रूप देश काल सब का सब पता है। तुम जानते हो इस रथ द्वारा बाप हमको सब राज समझाते हैं। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाया है। ये कितना सूक्ष्म है, सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझना। बाबा कहते ये कितना सूक्ष्म राज है। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप बाप ही है, वो यहाँ आते जरूर है, नई दुनिया स्थापन करना उनका ही काम है। तो क्यों आते हैं बाप? हाँ, कई बाबा ने आज कारण बताए, मैं नई दुनिया की स्थापना करना ये मेरा ही काम है, इसलिए मुझे ही आना पड़ता है। ऐसे नहीं कि वहाँ बैठे स्थापना करते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाबा इस तन द्वारा हमको सम्मुख समझा रहे हैं। ये भी बाप का प्यार करना हुआ ना, भगवान खुद आकर के रथ में प्रवेश करके बच्चों को समझाते हैं। ये भगवान का कितना बड़ा प्यार है बच्चों के लिए। ये भी बाप का प्यार करना हुआ ना, और कोई को भी उनकी बायोग्राफी का पता ही नहीं है। गीता है आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र, ये भी तुम जानते हो। इस ज्ञान के बाद है विनाश। अभी जो बाबा ज्ञान दे रहे हैं, इसके बाद इसका शास्त्र नहीं बनेगा, क्योंकि विनाश हो जाता है, बन जाता है, किताब बन जाता है। लेकिन शिव बाबा जो आते उसका तो नहीं बनता। बाबा आए, ज्ञान दिया, पावन बनाया और विनाश हुआ, तो यहाँ का तो कुछ भी नहीं रहता है भविष्य में। तो बाबा कहते हैं, ये भी तुम जानते हो इस ज्ञान के बाद है विनाश। विनाश जरूर होना है, और जो भी धर्म स्थापक आते हैं उनके आने पर विनाश नहीं होता है। वो तो सृष्टि को थमाने के लिए आते हैं, क्योंकि अभी और चलनी है सृष्टि, और जब बाप आते हैं तब तो और तो सृष्टि को आगे चलना नहीं है उस रूप से। तो बाबा कहते हैं, और जो धर्म स्थापक आते हैं उनके आने पर विनाश नहीं होता है। विनाश का टाइम ही ये टाइम है संगम युग। इसलिए तुमको जो ज्ञान मिलता है वो फिर खलास हो जाता है। विनाश हुआ, बाबा ने ज्ञान दिया और तुमने पद पाया, फिर ये ज्ञान खलास हो जाता है। तुम बच्चों की बुद्धि में ये सब बातें हैं, तुम रचयिता और रचना को जान गए हो। है दोनों अनादि जो चलते आते हैं, रचयिता और रचना को जान गए हो, तो रचयिता रचना ये दोनों है तो अनादि जो चलते आते हैं, तो फिर उनको रचयिता क्यों कहते हैं और हमको रचना क्यों कहते हैं, जबकि दोनों ही अनादि है। रचयिता भी अनादि है, रचना भी अनादि है, लेकिन बाबा आकर के रिजुविनेट करते हैं ना, बाबा ये शब्द यूज करते हैं, पुराने को फिर नया बनाते हैं, इसीलिए बाबा को रचयिता कहा जाता है और हम आत्मा को रचना कहेंगे। तो बाबा कहते हैं दोनों ही अनादि जो है जो चलते आते हैं। बाप का पाठ ही है संगम पर आने का। भक्ति आधा कल्प चलती है, पर ज्ञान आधा कल्प नहीं चलता है। ज्ञान आधा कल्प नहीं चलता है, तो क्या चलता है? ज्ञान का वर्षा, ज्ञान की प्रालब्ध, वो वर्षा आधा कल्प के लिए मिलता है। ज्ञान तो एक ही बार सिर्फ संगम पर ही मिलता है। ये क्लास तुम्हारा एक ही बार चलता है, केवल संगम युग पर ही ये क्लास चलता है। ये बातें अच्छी रीति समझकर फिर औरों को समझाना भी है। पद का सारा मदार है सर्विस पर, पढ़ना और पढ़ाना, समझना और समझाना। बाबा कहते ये ब्राह्मणों का परम कर्तव्य है, धारण करो और कराओ, यज्ञ करो और कराओ, ऐसे कहते ना ब्राह्मणों के लिए। पद का सारा मदार है सर्विस करने पर, तुम जानते हो पुरुषार्थ कर अब नई दुनिया में जाना है। धारणा कर और दूसरों को समझाना, इस पर ही तुम्हारा पद है। विनाश होने के पहले सबको बाप का परिचय देना है और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय भी देना है। तुम भी बाप को याद करते हो कि जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएं। क्यों याद करते हो? एक तो बाबा से प्यार है, इतना ज्ञान मिलता है, लेकिन इसलिए भी याद करते हो ताकि हमारे जन्म जन्म के पाप कट जाएं। जब तक बाप पढ़ाते रहते हैं याद जरूर करना है। पढ़ाने वाले जब तक बाबा पढ़ा रहे हैं हमें याद भी करना है, और पढ़ाने वाले के साथ तो योग रहेगा ही, रखना भी है, भूलना नहीं है पढ़ाने वाले को। टीचर पढ़ाते हैं तो उनके साथ योग रहता है, योग बिगड़ पढ़ेंगे कैसे? अब स्कूल जाना है, स्कूल जाना है, पढ़ना है, टीचर पढ़ाने आएंगे, मुझे मेरा मैंने होमवर्क करना है, तो हर वक्त टीचर भी याद आएगा, स्कूल भी याद आएगा, पढ़ाई भी याद आएगी। तो टीचर पढ़ाते हैं तो उनके साथ योग रहता है, योग बिगड़ पढ़ेंगे कैसे? टीचर ने मुझे होमवर्क दिया, टीचर ने दिया है, तो टीचर तो याद आएगा ना, टीचर के को याद किए बिना पढ़ेंगे कैसे? योग अर्थात पढ़ाने वाले की याद, ये बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, तीनों रूप से पूरा याद करना पड़ता है। केवल बाप को नहीं, केवल टीचर को नहीं, केवल सतगुरु को नहीं, तीनों को पूरा याद करना पड़ता है। ये सतगुरु तुम्हें एक ही बार मिलता है। ज्ञान से सदगति मिली बस, फिर गुरु की रसम ही खत्म। अब सतगुरु रूप में हमें पावन बना रहा है, घर ले जाएगा, फिर सत्यु त्रेता में तो लौकिक बाप टीचर मिलेगा, पर गुरु नहीं मिलेगा कोई भी, क्योंकि गुरु की रसम ही खत्म हो जाती है सत्युग में। सबको सदगति मिल गई तो गुरु किस लिए चाहिए? तो बाबा कहते ज्ञान से सदगति मिली बस, फिर गुरु की रसम ही खत्म। बाप टीचर की रसम चलती है सत्युग में भी, लेकिन गुरु की रसम खत्म। गुरु की रसम खत्म हो जाती है, सदगति मिल गई ना, निर्वाण धाम में तुम प्रैक्टिकल में जाते हो, फिर अपने समय पर पाठ बजाने आएंगे। मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों तुमको मिल जाती है, फिर गुरु की क्या दरकार? मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों मिल जाती है, मुक्ति भी जरूर मिलती है। चाहे थोड़े समय के लिए ही, घर तो जाकर रहेंगे ना, जरूर जाना है, क्योंकि फिर जीरो से शुरू करना है। अगर सीधा सतयुग में गए तो कहीं कलयुग का की याद ना आए, हाँ, पर जीरो फिर न्यूट्रल पर रखना होता, फिर हाँ जा बाबा कहते हैं तो रिफ्रेश करते हैं ना, जैसे कंप्यूटर या मोबाइल को भी रिफ्रेश करना पड़ता है, बहुत गड़बड़ हो गई है, बहुत अंदर मिक्स हो गया है तो रिफ्रेश करना पड़ता है, तो आत्मा भी परम धाम चली जाती है, रिफ्रेश हो गई फिर नई सिर शुरू होता है। तो बाबा कहते हैं थोड़े समय के लिए भी घर जाकर रहेंगे, यहाँ तो शरीर से पाठ बजाना पड़ता है, पिछाड़ी में सब पाठधारी आ जाएंगे, आ रहे हैं आ रहे, खूब जल्दी जल्दी आ रही है सृष्टि पर पाठ बजाने जो बचे हुए हैं, पिछाड़ी में सब पाठधारी आ जाएंगे। नाटक जब पूरा होता है तो सब एक्टर्स स्टेज पर आ जाते हैं, अभी भी सब एक्टर स्टेज पर आकर इकट्ठे हुए, लगभग आ तो गई हूँ ना, थोड़े थोड़े कुछ होंगे परमधाम में, वो भी आते जा रहे हैं, तो अभी भी सब एक्टर स्टेज पर आकर इकट्ठे हुए हैं। कितना घोर घमसान हो गया है, अभी ड्रामा इतना लंबा चला है, इतने एक्टर्स हैं और सब एक साथ आ गए स्टेज पर, थोड़े थोड़े करके आते तो घमसान नहीं होता स्टेज पर, बस सारे आ गए इकट्ठे तो पूरा स्टेज ही एकदम भर जाता है ना, इतने एक्टर्स खड़े होते हैं तो घोर घमसान, तो कितना घोर घमसान है। सतयुग आदि में इतना घोर घमसान नहीं था, थोड़े थे एक्टर्स, अभी धीरे धीरे आ रहे हैं पार्ट बजाने परमधाम से, तो घोर घमसान नहीं था सतयुग में, अभी तो कितनी अशांति है। तो अब जैसे बाप को सृष्टि चक्र की नॉलेज है तो तुम बच्चों को भी नॉलेज है, बीज को बीज की नॉलेज है ना, तो हमारा झाड़ कैसे वृद्धि, बीज को नॉलेज है, हाँ बीज को पता होता है कि हमारा झाड़ कैसे वृद्धि को पाकर फिर खत्म होता है। अभी तुम बैठे हो नई दुनिया की सैपलिंग लगाने, अथवा आदि सनातन देवी देवता धर्म की सैपलिंग लगाने, क्यों आए हो, क्यों यहाँ बैठे हो, आदि सनातन देवी देवता धर्म की सैपलिंग लगाने, बाप आए हैं तो हम उसके उनके साथी हैं। तो बाबा कहते हैं तुमको पता है इन लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे पाया, तुम जानते हो हम अभी नई दुनिया का प्रिंस बनेंगे, हाँ नशा चढ़ता है, नई दुनिया का प्रिंस बनेंगे, उस दुनिया में रहने वाले तो सब अपने को मालिक ही कहेंगे ना, भले वो प्रिंस नहीं भी होगा तो भी अपने को स्वर्ग का मालिक तो कहेगा ना, जैसे अभी भी सब कहते हैं हम सब, हाँ भारतवासी कहते हैं ना, भारत हमारा देश है, तो नशे से कहते हैं भारत हमारा देश है, हम सब भारतवासी हैं, हाँ भारत पर जैसे हम रहते हैं, तुम समझते हो अभी हम संगम पर खड़े हैं, शिवालय में जाने वाले हैं, बस अभी गए की गए, जैसे याद करते हैं अभी गए की गए, बस शिवालय परम धाम में गए की गए, हम जाकर फिर सतयुग भी शिवालय है तो हम जाकर शिवालय के मालिक बनेंगे, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही ये है लक्ष्मी नारायण, यथा राजा रानी तथा प्रजा सब शिवालय के मालिक बन जाते हैं, बाकी राजधानी में भिन्न भिन्न स्टेटस तो होते ही है, राजधानी है एक, सभी तो राजा रानी नहीं बनेंगे, तो राजधानी में भिन्न भिन्न स्टेटस तो होते ही है, वहाँ वजीर तो कोई होता नहीं है, बस राजा रानी प्रजा और दास दासियां, बस वजीर कोई होता नहीं, वजीर तब होते हैं जब पतित बनते हैं, लक्ष्मी नारायण व राम सीता का वजीर नहीं सुना होगा, क्योंकि वो खुद सतो प्रधान पावन बुद्धि वाले हैं, वजीर तब लिया जाता है जब राय सलाह के लिए कोई चाहिए, एडवाइजर चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को भी एडवाइस देने वाले एक बहुत होते हैं ना, तो वो तो बाबा कहते हैं वो पावन बुद्धि वाले जो है उनको कोई एडवाइजर नहीं चाहिए, क्योंकि वो खुद सतो प्रधान पावन बुद्धि वाले हैं। फिर जब पतित बनते हैं तब राजा रानी एक वजीर रखते हैं राय लेने के लिए। अभी तो देखो अनेक अनेक वजीर है, ये सब मंत्री जो है एक एक डिपार्टमेंट के, ये सब वजीर ही है ना। मंत्री, मंत्री शब्द कहाँ से आया, मंत्र शब्द से, और मंत्र का मतलब है राय देने वाला, मंत्रणा करने वाला, ये सब संस्कृत के शब्द है। मंत्रणा से मंत्र आया, मंत्र से मंत्री आया, तो जो राय सलाह देते हैं वो मंत्रणा करते हैं, मंत्री बनते हैं, मंत्र देते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी तो अनेक वजीर हैं, तुम बच्चे जानते हो ये बहुत मजे का खेल है, मजे का खेल है ये खेल। हाँ, ड्रामा मजे का है। फिल्म देखने क्यों जाते हैं, नाटक देखने क्यों जाते हैं, एंटरटेनमेंट और क्या है, सब एंटरटेनमेंट के लिए, मजा लेने लिए जाते हैं। तो ये बेहद का नाटक भी तो ऐसे मजे का है ना। खेल हमेशा मजे का ही होता है, मनोरंजन के लिए ही होता है। तो खेल हमेशा मजे का ही होता है, सुख भी होता है दुख भी होता है, हर खेल में सुख भी होता है दुख भी होता है। हाँ, हार भी होती है जीत भी होती है, दोनों होते हैं। इस बेहद के खेल को तुम बच्चे ही जानते हो, इसमें रोने पीटने आदि की तो बात ही नहीं है। हाँ, भले रोना पीटना दिखाते भी है ना, फिल्मों में दिखाते रोना पीटना, अब सच में थोड़ी वो रो रहे हैं, वो बताते ग्लिसरीन लगा देते हैं, ग्लिसरीन, तो आंखों में ग्लिसरीन लग गई तो जैसे आंखों से आंसू आ गया, तो ग्लिसरीन लगाते हैं। ग्लिसरीन में जलन नहीं होगी लेकिन लगेगा तो सही ना, तो आंखों में आंसू आ जाता है। तो फिर जब वो अपना ही देखते हैं जो उन्होंने बाट पाट बजाया, तो कहेंगे वाह कितना अच्छे रीति से रोया आपने, पर है तो सब झूठ ना। तो बाबा कहते हैं इसमें रोने पीटने आदि की तो बात ही नहीं है, गाते भी हैं बीती को बीती देखो, बीती सो बीती देखो, बनी बनाई बन रही अब कुछ बननी नहीं। ये नाटक तुम्हारी बुद्धि में है, हम इनके एक्टर्स हैं, हमारे 84 जन्मों का पाठ एक्यूरेट अविनाशी है, एक्यूरेट और अविनाशी है। जो जिस जन्म में जो एक्ट करते आए हैं वही करते रहेंगे। आज से 5000 वर्ष पहले भी तुमको यही कहा था कि अपने को आत्मा समझो। गीता का जो दूसरा अध्याय है वो सारा आत्मा पर ही। अर्जुन कहता मैं कैसे मारूं कैसे मारूं, तो भगवान ने क्या कहा, इनको आत्मा देखो, आत्मा तो मरती नहीं है, आत्मा तो एक वस्त्र छोड़ दूसरा लेती है, तो तुम इनको आत्मा समझो, कोई मरता नहीं है ये आत्मा है। तो बाबा कहते हैं तुमको यही कहा था 5000 साल पहले कि अपने को आत्मा समझो, गीता में भी अक्षर है। तुम जानते हो बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म जब स्थापन हुआ था तो बाप ने कहा था, और क्या कहा था गीता में क्या है कि बाप ने कहा था कि सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, सर्वधर्मान परित्यज मामेकं शरणं व्रज, ये भगवान गीता में आता है। सब धर्मों को छोड़ अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। मन मना भव का अर्थ तो बाप ने अच्छी रीति समझाया है, भाषा भी यही है, बाबा हिंदी में ही बोलते हैं, मन मना भव तो संस्कृत है, तो बाबा भाषा भी यही है। यहाँ देखो कितनी ढेर भाषाएं हैं दुनिया में, कितनी ढेर भाषाएं, यहाँ भी जब विदेशी आते हैं कितनी ढेर भाषाओं में ट्रांसलेशन होता है। किसी ने यहाँ तक किया, उस समय मैं समझती हूँ एक बार था 20-25 भाषाओं में ट्रांसलेशन हो रहा था, क्योंकि इतने हमारे पास तो बहुत कम है ना ये जो ट्रांसलेशन के बूथ, तो सबको फिर FM माइक देते हैं, जो जिनका नहीं हो पाता है थोड़े हैं तो FM माइक देते हैं, तो FM माइक में फिर अपना अपना उनका फ्रीक्वेंसी होता है तो वो सुनते हैं। तो एक बार 25 ट्रांसलेशंस हुए, तो किसी ने उस समय कहा यूनाइटेड नेशंस में भी इतना नहीं ट्रांसलेशन होता है जितना यहाँ जैसे बाबा के घर में होता है। तो ये भी देखो ये उस यूनाइटेड नेशंस से भी तो कितना आ गया ये। तो बाबा कहते हैं भाषाओं पर भी कितना हंगामा है दुनिया में, भाषा बिगड़ तो काम चल न सके, भाषाएं तो चाहिए ना, ऐसी ऐसी भाषाएं सीख कर आते हैं जो मदर लैंग्वेज भी खलास हो जाती है। भाषा इतनी सीख लेते हैं, कई कईयों को बाबा कहते इनाम भी मिलता है बहुत ज्यादा भाषाएं सीखते हैं, लेकिन क्या होता है मैं अपना अनुभव सुनाऊं, अब तो हिंदी भाषा बोलते हैं, फिर इंग्लिश भी बोलते हैं, फिर सिंधी मदर टंग है हमारी तो सिंधी भी बोलते हैं, फिर हम नेपाल गए तो नेपाली भाषा सीख ली, फिर कर्नाटक गए तो कन्नड़ा भाषा सीख ली, फिर हैदराबाद गए तो तेलुगु भाषा सीख ली। अब मिक्सअप हो गया, ये तेलुगु बोलना है तो कन्नड़ा आ जाता है, कन्नड़ा बोलना है तेलुगु आ जाता है। मैंने कहा छोड़ो, बस एक हमारी हिंदी भाषा ही बहुत अच्छी है। तो इसलिए जितनी भाषाएं सीखेंगे मिक्सअप तो हो ही जाते हैं, लेकिन कई तो बहुत होशियार होते हैं, को जो भाषा उनको कहो तो उसमें बोलते हैं, सीख लेते हैं। तो बाबा कहते हैं जो जास्ती भाषाएं सीखते हैं उनको इनाम मिलता है, जितने धर्म उतनी भाषाएं होगी, धर्मों से तो बहुत ज्यादा भी भाषाएं है ना, उतनी भाषाएं होंगी वहां, तो तुम जानते हो अपनी ही राजाई होगी तो भाषा भी एक ही होगी, एक ही राजाई है तो एक ही भाषा है। यहाँ तो 100 माइल पर एक भाषा है, और चलो भाषा एक ही होगी अगर 100 माइल पर भी, लेकिन एक्सेंट तो अलग होगा ना, बोलने का टोन अलग होगा, ढंग अलग होगा, सब अलग अलग। यहाँ तो 100 माइल पर एक भाषा है, वहां तो एक ही भाषा होती है। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं, तो उस पर बाप को ही याद करते रहो। हाँ, तो क्या करो, उस बाप को ही याद करते रहो। तो शिव बाबा समझाते हैं ब्रह्मा द्वारा, रथ तो जरूर चाहिए ना, शिव बाबा हमारा बाप है। बाबा कहते हैं मेरे तो बेहद के बच्चे हैं। अब हम तो कहेंगे मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, अब बाबा क्या कहेंगे, मेरे तो बेहद के बच्चे हैं। बाबा इन द्वारा पढ़ाते हैं ना, टीचर को कभी गले से थोड़ी लगाते हैं। अब हो सकता है किसी ने कहा होगा बाबा गले लगाओ, बाबा गले लगाओ, तो समझते ना प्यार जताना है बाबा को, तो बाबा गले लगाए और हम भी बाबा को गले लगाएं। तो बाप को अभी बाबा कहते टीचर को कभी गले थोड़ी लगाया जाता, गले तो चलो दोस्त है तो गले लगाते हैं, परंतु टीचर है तो टीचर तो ऑफिशियल होता है ना, तो टीचर को कभी गले से थोड़ी लगाते हैं। बाप तो तुमको पढ़ाने आए हैं, राजयोग सिखलाते हैं, तो टीचर ठहराना। तो स्टूडेंट्स हो, स्टूडेंट कभी टीचर को भाकी पहनते हैं क्या, गले लगाते हैं क्या, तो स्टूडेंट कभी टीचर को भाकी पहनते हैं क्या। एक बाप का बनकर फिर औरों से दिल नहीं लगानी है, बाबा का बन गए तो अभी औरों से दिल नहीं लगानी है, बस एक बाप से ही दिल लगानी है। बाप कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखलाने आया हूं ना, तुम शरीरधारी और हम अशरीरी, ऊपर में रहने वाले, तुम शरीरधारी और हम अशरीरी ऊपर में रहने वाले। तुम कहते हो बाबा पावन बनाने आओ, मैं ऊपर का रहने वाला और तुम पतित बन गए हो, मुझे बुलाते हो कि पावन बनाने वाला बाबा आओ, तो गोया तुम पतित हो ना, पतित पावन आओ माना तुम पतित हो ना, फिर मेरे को भाकी कैसे पहन सकते। अब भाकी तो उनको पहनी जाएगी या गले उनको लगना होता है जो समान हो, अब पतित है हम और भगवान तो पावन है, तो उनको गले कैसे लगाएंगे, फिर मेरे को भाकी कैसे पहन सकते हो। प्रतिज्ञा कर फिर पतित बन जाते हैं। बाबा कहते थे वो ही बाबा की गोद में आए जिसने पूरी प्रतिज्ञा की है पवित्र रहने की, अगर फिर जाके पतित बनेंगे तो बाबा की गोद में भी नहीं आ सकते। तो बाबा कहते हैं, बाबा तो प्रतिज्ञा कर फिर पतित बन जाते हैं, जब एकदम पावन बन जाएंगे पिछाड़ी में फिर याद में भी रहेंगे, टीचर को गुरु को याद करते रहेंगे। अभी तो छीछी बन गिर पड़ते हो और ही 100 गुना दंड पड़ जाता है। बाप का बने, टीचर का बने, सदगुरु का बने, चलो बाबा की गोद में भी आए और फिर जाके पतित बना। अब एक की गोद ली फिर जाके दूसरे की गोद ली या तीसरा, मतलब पतित बन गया तो बाबा कहते हैं 100 गुना दंड, 100 गुना दंड पड़ जाता है। ये तो बीच में दलाल के रूप में मिला है, उनको याद उनको करना है। जब बाबा के पास आते थे, बाबा की गोद में जाते, मतलब बाबा अपना सिर जैसे बाबा की गोद पे रखते थे, तो बाबा कहते थे किसकी गोद में आए हो, इनकी गोद में नहीं आए हो, आप शिव बाबा को याद करो, शिव बाबा की गोद है, ये तो केवल माध्यम है, याद शिव बाबा को करना, इनको नहीं करना। तो बाबा कहते ये तो बीच में दलाल के रूप में मिला है, याद उनको करना है। बाबा कहते हैं मैं भी उनका मुरब्बी बच्चा हूँ, मैं भी उनका मुरब्बी बच्चा हूँ, ब्रह्मा बाबा कहते हैं। हाँ तो तुम मेरी गोद में नहीं आते हो, तुम शिव बाबा की गोद है, ये बाबा ने शिव बाबा ने ये गोद क्या जैसे किराए पर ली हुई है ना। तो बाबा कहते हैं मैं भी उनका मुरब्बी बच्चा हूँ, फिर मैं कहाँ भाकी पहन सकता हूँ। तो बाबा ने हंसाया, देखो तुम बच्चे बाबा की गोद में आते हो तो तुम तो कहेंगे चलो शिव बाबा को की गोद में हम गए, ब्रह्मा माध्यम है, अब ब्रह्मा बाबा किसकी गोद में जाए। हमारे पास सामने तो चलो ब्रह्मा बाबा का रथ है, परंतु ब्रह्मा बाबा किसकी गोद में जाए, शिव बाबा को तो गोद है ही नहीं, वो तो शरीर ही नहीं है। तो बाबा कहते फिर मैं कहाँ भाकी पहन सकता हूँ। बाबा कहते मैं उनका मुरब्बी बच्चा हूँ, फिर मैं कहाँ भाकी पहन सकता हूँ, तुम फिर भी इस शरीर द्वारा मिलते हो, मैं उनको कैसे भाकी पहनूं। बाप तो कहते हैं बच्चे तुम एक बाप को ही याद करो, प्यार करो, याद से पावर बहुत मिलती है, बहुत शक्ति मिलती है, बाप सर्वशक्तिवान है, बाप से ही तुमको इतनी पावर मिलती है। तुम कितने बलवान बनते हो, हाँ कितने बलवान, तो तुम कितने बलवान बनते हो, तुम्हारी राजधानी पर कोई जीत पा न सके, इतने बलवान बन जाते हो, इतने ताकत वाले बन जाते हो, कोई आपकी राजधानी पर आक्रमण कर ही न सके, रावण राज्य ही खत्म हो जाता है, दुख देने वाला कोई रहता ही नहीं है, उनको सुख धाम कहा जाता है, रावण सारे विश्व में सबको दुख देने वाला है। जानवर भी दुखी होते हैं, केवल मनुष्य ही दुखी नहीं है बेचारे, जानवर भी कितने दुखी होते हैं, वहां तो जानवर भी आपस में प्रेम से रहते हैं, सतयुग में कोई जानवर भी दुखी नहीं होगा, यहाँ तो प्रेम है ही नहीं, है ही नहीं प्रेम। तुम बच्चे जानते हो ये ड्रामा कैसे फिरता है, इसके आदि मध्य अंत का राज बाप ही समझाते हैं। कोई अच्छी रीति पढ़ते है, कोई कम पढ़ते हैं, पढ़ते तो सब है ना, सब पढ़ते हैं, पर कोई अच्छी रीति कोई कम, सारी दुनिया भी पढ़ेगी, कुछ तो मिलेगा ना उनको भी, सारी दुनिया भी पढ़ेगी अर्थात बाप को याद करेगी, अंत में तो याद करेंगे ना, ये भगवान ये भी तो कहेंगे, तो ये भी तो जैसे याद करना हुआ, बाप को याद करेगी। बाप को याद करना ये भी पढ़ाई है ना, अभी हम बाबा को याद कर रहे हैं, फिर टीचर के रूप में पढ़ाई पढ़ रहे हैं, बाबा पढ़ा रहे हैं तो टीचर को भी याद कर, ये पढ़ाई है ना। उस बाप को सब याद करते हैं, वो सर्व का सदगति दाता, सबको सुख देने वाला है। कहते भी हैं आकर पावन बनाओ तो जरूर पति ठहरे, वो तो आते ही हैं विकारियों को निर्विकारी बनाने। क्यों आते हैं बाबा, विकारियों को निर्विकारी बनाने, हाँ ये भी लिस्ट बन सकती है, बाप क्यों आते हैं, कितनी बातें बाबा ने कही। वो तो आते ही है विकारियों को निर्विकारी बनाने, पुकारते भी हैं कि हे अल्लाह आकर हमको पावन बनाओ। उनका यही धंधा है, बाप अपना धंधा करने आते हैं सृष्टि पर। कौन सा धंधा है? पतितों को पावन बनाना, उनका यही धंधा है, इसीलिए बुलाते हैं। अब तुम्हारी भाषा भी करेक्ट होनी चाहिए। अब क्या भाषा होनी चाहिए? वो लोग कहते हैं अल्लाह, वो कहते हैं गॉड, मुसलमान कहेंगे अल्लाह और क्रिश्चियन कहेंगे गॉड, गॉड फादर भी कहते हैं, गॉड द फादर ऐसे कहते हैं। पिछाड़ी वालों की बुद्धि फिर भी अच्छी रहती है, तो एक को पुकारते हैं। और भारतवासियों के लिए तो कितने भगवान हो गए। हमारे पास एक महात्मा जी आए थे मिलने, तो मैंने पूछा कि आप किसको याद करते हो। उस दिन उसका मौन था, तो बोला नहीं, जवाब नहीं दिया, परंतु उसके हाथ में कागज और नोटबुक और पेन थी। तो आप किसको याद करते हो? लिखा, पहले शिव लिखा, फिर कृष्ण लिखा, फिर राम लिखा, फिर हनुमान लिखा, अब 8-10 नाम लिख दिए। तो मैंने कहा फिर इतनों को आप याद करते हो या एक को याद करते हो? हम तो एक को याद करते हैं। तो जब एक को याद करना हो तो सबसे पहले किसको याद करेंगे? फिर लिखा शिव, शिव को ऊपर रखा। तो हमने कहा ये भी बहुत अच्छा है। तो बाबा कहते हैं पिछाड़ी वालों की बुद्धि फिर भी अच्छी रहती है, वो एक को याद करते हैं, इतना दुख नहीं उठाते हैं। तो अब तुम सम्मुख बैठे हो, क्या करते हो? बाबा को इस भ्रकुटी में देखते हो। अब आप बाबा के कमरे में हम जाते हैं तो ब्रह्मा बाबा का बहुत बड़ा ट्रांसलाइट है, तो बाबा को देखते हैं, तो कहाँ देखते हैं? शिव बाबा को। ब्रह्मा बाबा के ऊपर भी ट्रांसलाइट है ना, शिव बाबा का वो सिंबल है। तो और फिर बाबा की दृष्टि में भी देखते हैं, बाबा की भ्रकुटी पर भी देखते हैं, शिव बाबा उनके भ्रकुटी में विराजमान है। तो देखो बाबा कहते हैं, हाँ, तो बाबा कहते हैं इतना, तो अब तुम सम्मुख बैठे हो, क्या करते हो? बाबा को इस भ्रकुटी में देखते हो। अब बाबा मुरली चला रहे हैं, बाबा को तुम देखते हो, भ्रकुटी में देखते हो, फिर बाबा फिर तुम्हारी भ्रकुटी में देखते हैं, तुम बच्चों की भ्रकुटी में देखते हैं और बाबा वाणी चलाते हैं। जिसमें मैं प्रवेश करता हूँ उनको देख सकता हूँ। अब बाबा ब्रह्मा बाबा की इस दृष्टि से या आंखों से बच्चों को देखेंगे, अब जिसमें बैठे हैं उसको देख सकते हैं। बाबा पूछते हैं जिसमें मैं प्रवेश करता हूँ उनको देख सकता हूँ? वो तो बाजू में बैठा है, बाजू में बैठा है तो आत्मा तो देख सकती है ना, मन की आंख से तो देख सकती है ना कि ब्रह्मा की आत्मा मेरे बाजू में बैठी है। वो तो बाजू में बैठा है। ये बड़ी समझने की बातें हैं, मैं इनके बाजू में बैठा हुआ हूँ। ब्रह्मा बाबा की भ्रकुटी में शिव बाबा की भी आत्मा है तो ब्रह्मा बाबा की भी आत्मा है, मैं इनके बाजू में बैठा हूँ, ये भी समझता है। ब्रह्मा बाबा भी समझता है हमारे बाजू में बैठा है शिव बाबा। तुम कहेंगे हम सामने दो को देखते हैं, तुम कहेंगे हम सामने दो को देखते हैं, ब्रह्मा बाबा की आत्मा को भी और शिव बाबा की आत्मा को भी। बाप और दादा दोनों आत्मा को देखते हो। तुम्हारे में ज्ञान है, बाप दादा किसको कहते हैं? जब हम बाप दादा कहते हैं तो केवल शिव बाबा नहीं, ब्रह्मा बाबा भी साथ में, बाप दादा। तो बाप दादा किसको कहते हैं? तुम्हारे में ज्ञान है, आत्मा सामने बैठी है। भक्ति मार्ग में तो आंखें बंद करके बैठ सुनते हैं, कई बार ना सत्संग सुनते रहते हैं, आंखें बंद करके सत्संग सुनते रहते हैं। पढ़ाई कोई ऐसे थोड़ी होती है, अब पढ़ाई में तो टीचर को देखना होता है ना, पढ़ाई में टीचर बोर्ड पर लिखता, वो आंखें बंद करके बैठ जाए तो बोर्ड पर क्या लिखा है वो थोड़ी पढ़ सकेंगे, आंखें बंद है उनकी। तो देखो बाबा क्या कहते हैं, बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में तो आंखें बंद कर बैठ सुनते हैं, पढ़ाई कोई ऐसे थोड़ी होती है, टीचर को तो देखना पड़े ना, ये तो बाप भी है टीचर भी है, तो सामने देखना होता है। हाँ, सामने देखना होता है, सब सामने देख रहे हैं ना। देखो बाबा कहते हैं सामने बैठे और आंखें बंद हो, है क्या किसकी आंखें बंद, जागृत हो जाओ अगर आंखें बंद हो रही है। तो टीचर सामने बैठा है वो देख रहा है और टीचर को देखना पड़े ना, ये तो बाप भी है टीचर भी है, सामने देखना होता है। सामने बैठे आंखें बंद हो झुटका खाते रहे, ऐसी पढ़ाई तो होती नहीं है। हाँ, ऐसी पढ़ाई तो होती नहीं कि सामने टीचर के बैठे और आंखें बंद और झुटका खाता रहे। स्टूडेंट टीचर को जरूर देखता रहेगा, देखते है ना, बाबा भी देखते थे कोई झुटका तो नहीं खा रहा। स्टूडेंट टीचर को जरूर देखता रहेगा, नहीं तो अगर हाँ देख रहे हैं कि स्टूडेंट झुटका खा रहा है तो क्या समझेगा टीचर, नहीं तो टीचर कहेंगे ये तो झुटका खाता रहता है, ये कोई भांग पीकर आया है। भांग पीकर आया है जो बार बार ऐसे सिर नीचे करता रहता है, नींद करता रहता है, तो ये तो कोई भांग पीकर आया है। तुम्हारी बुद्धि में है, बाबा इस तन में है, मैं बाबा को देखता हूँ, मैं बाबा को देखता हूँ। बाबा फिर बाबा समझाते हैं ये क्लास कॉमन नहीं है, कोई साधारण क्लास में नहीं बैठे हो जो कोई आंखें बंद करके बैठे। स्कूल में कभी कोई आंखें बंद करके बैठते हैं क्या? और सत्संगों को स्कूल नहीं कहा जाता है, वहां तो केवल सुनने का काम होता है ना, हमको टीचर को देखना थोड़ी है, वो कोई पढ़ा थोड़ी रहा है, वो तो बस सुना रहा है, कनरस है होता रहता है, कहानियां सुनाएगा, कोई भी कथा सुनाते हैं। और सत्संगों को स्कूल तो नहीं कहा जाता है, भल गीता भी बैठ सुनाते हैं परंतु उनको स्कूल तो नहीं कहा जाता। गीता पाठशाला कहते हैं लेकिन बाबा कहते हैं स्कूल की तरह बच्चों को पढ़ाना और फिर बोर्ड पर लिखना फिर पूछना फिर जवाब लेना, तो बाबा कहते हैं ये थोड़ी कोई सत्संग में होता है, परंतु उसको स्कूल तो नहीं कहा जाता है। वो कोई बाप थोड़ी है, वो कोई बाप थोड़ी है जिसको देखें। कोई कोई शिव के भक्त होते हैं तो शिव को ही याद करते हैं, कान से कथा सुनते रहते हैं। शिव की भक्ति करने वालों को शिव को ही याद करना पड़े। कोई भी सत्संग में प्रश्न उत्तर आदि नहीं होता है, बस वो जो महात्मा जी है जो साधु है संत है वही सुनाता रहता है, पर प्रश्न उत्तर नहीं होता है। कोई भी सत्संग में प्रश्न उत्तर आदि नहीं होता, यहाँ होता है। यहाँ तुम्हारी आमदनी बहुत है, आमदनी बहुत है, बहुत प्राप्ति है, बहुत धन मिलता है, आमदनी बहुत है। आमदनी में कभी उबासी नहीं आ सकती है, नींद तो छोड़ो उबासी भी नहीं आ सकती है। हाँ, उबासी देते हैं ना, नींद अभी पूरी नहीं हुई है तो मुरली में भी उबासी देते हैं, फिर ऐसे ऐसे करते हैं। बाबा कहते उबासी भी नहीं आनी चाहिए, आमदनी में कभी उबासी नहीं आ सकती है। धन मिलता है ना तो खुशी होती है, उबासी गम की निशानी है। अगर उबासी देते हाँ इतना मुंह खुल जाता है, और कईयों का तो नींद ऐसे करते हैं आंखें तो बंद होती है और सिर पीछे होता है मुंह खुला हुआ, और एकदम तो कोई उसके मुंह में कोई डाल भी दे उसको पता भी नहीं चलता, फिर अचानक बाबा कहते वो उठता है। तो उबासी गम की निशानी है, उबासी देंगे सुस्ती करेंगे तो नींद करेंगे तो ये गम की निशानी है। बीमार होगा व दिवाला निकाला होगा तो उबासी आती रहेगी, पैसा मिलता रहेगा तो कभी उबासी नहीं आएगी। बाबा व्यापारी भी है, साकार में बाबा बहुत बड़े व्यापारी भी थे ना, रात को स्टीमर आते थे तो रात को जागना पड़ता था। विदेशों से हीरे आते थे, कई देशों में हीरे निकलते तो वो हीरे आते थे तो फिर उनको लेते थे फिर उनको तराशते थे। सूरत शहर जो है वो पूरा हीरों का ही शहर है, डायमंड सिटी बोलते हैं, वहां पर विदेश के बहुत हीरे आते हैं और वहां वो जो सारी बिजनेस ही वही है हीरे तराशने की। यहाँ भी कई बैठे होंगे हीरे तराशने वाले, बैठे हैं क्या? कोई नहीं, आप बैठे हैं तो आप कहाँ रहते हैं? हाँ? अच्छा तो वहां भी होगा, तो वहां सूरत में बहुत है। तो बाबा कहते हैं तो कोई व्यापारी भी है, रात को स्टीमर आते थे तो रात को जागना पड़ता था, फिर कोई आते थे या दुकान में भी रात को खुला रखना पड़ता था दुकान भी, क्योंकि कोई कोई बेगम रात को आती थी, महारानियां होती थी ना, रानियां होती थी, बेगम होती थी, निजाम का भी राज्य था, अब वो दिन में नहीं निकलते थे क्योंकि लोग देखेंगे, तो वो रात को निकलती थी और पर्दे नशीन होती थी, तो इसीलिए रात को निकलती थी और फिर दुकान पर जाती थी, उनको हीरों के जेवर चाहिए होते थे, तो कोई कोई बेगम रात को आती है तो सिर्फ फीमेल के लिए ही खुला रहता था, रात को कोई बेगम आए, कोई महारानी आए, कोई रानी आए, तो उनके लिए दुकान खुला रखते थे बाबा। हाँ तो सिर्फ फीमेल के लिए ही खुला रहता है। बाबा भी कहते हैं प्रदर्शनी आदि में फीमेल्स के लिए खास दिन रखो। क्यों खास दिन रखो? क्योंकि कई बार होते थे, जो राजस्थान में तो बहुत है, पर्दा नशीन होती है महिलाएं, गांव-गांव की माताएं आती है तो पर्दा करती है, अब वो पर्दा करेगी तो एग्जीबिशन कैसे देखेगी, अगर कोई पुरुष होगा तो कोई पर पुरुष होता है चाहे कोई भी हो, तो वो पर्दा कर देगी, तुरंत सिर को ढक देगी और मुंह को भी ढक लेगी, फिर एग्जीबिशन कैसे देखेगी। तो बाबा कहते थे कि आप कभी ऐसा दिन मुकर्र करो जिसमें खाली फीमेल्स ही आवे, स्त्रियां ही आवे, तब पुरुष सामने नहीं होगा तो पर्दा खोलेगी, अपना घूंघट खोलेगी और एग्जीबिशन समझेगी। तो बाबा ये भी कहते थे कई ऐसी माताएं कहां गांव में सेंटर होते हैं, गीता पाठशालाएं होती है, तो माताओं का अलग टाइम रखते थे, क्योंकि अगर पुरुषों के साथ वो बैठे तो पर्दा कर देगी, और पर्दा कर देगी तो फिर समझेगी कैसे। तो बाबा कहते हैं हाँ प्रदर्शनी आदि में फीमेल्स के लिए खास दिन रखो तो बहुत आएंगी, पर्दे नशीन भी आएंगी, बहुत पर्दे नशीन रहती है, मोटर में भी पर्दा रहता है, वो रानियां निकलती थी पर्दे नशीन तो होती थी परंतु मोटर गाड़ी में भी पर्दा रहता था उनके सिर को और जो मोटर में भी आती थी, मोटर में भी पर्दा रहता है, यहाँ तो आत्मा की बात है, देहाभिमान है तो इसीलिए पर्दा करना पड़ता है स्त्रियों को, यहाँ तो आत्मा की बात है, ज्ञान मिल गया तो पर्दा भी खुल जाएगा, फिर तो शिव शक्तियां थोड़ी कोई पर्दा नशीन होती है, ज्ञान मिल गया तो पर्दा भी खुल जाएगा, सतयुग में पर्दा आदि होता नहीं, अब लक्ष्मी बैठ के पर्दा वो निकाले या घूंघट निकाले, हाँ बाबा तो साक्षात्कार मुहूर्त है, सतयुग में पर्दा आदि होता नहीं, ये तो प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान है ना, तो इसलिए भाई भी चाहिए बहने भी चाहिए, अब पर्दा लगाए और घूंघट निकाल करके बैठी रहे तो ऐसे सिर करेगी और सो रही है क्या कर रही है पता ही नहीं चले, या तो इसलिए बाबा कहते हैं सामने देखना होता है, ये तो प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान है ना। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला ये खेल बड़ा मजे का बना हुआ है, इसमें सुख और दुख का पाठ नूंधा हुआ है, इसलिए रोने पीटने की बात ही नहीं है, बुद्धि में रहे बनी बनाई बन रही बीती का चिंतन नहीं करना है। दूसरा ये कॉमन क्लास नहीं है, इसमें आंखें बंद करके नहीं बैठना है, टीचर को सामने देखना है, उबासी आदि नहीं लेनी है, उबासी ये गम की निशानी है। वरदान संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट ले अपने योगी जीवन का प्रभाव डालने वाले सहज योगी भव। योगी जीवन माना जो सदा संतुष्ट है, तो संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट ले अपने योगी जीवन का प्रभाव डालने वाले सहज योगी भव। संतुष्टता योगी जीवन का विशेष लक्ष्य है, जो सदा संतुष्ट रहते और सर्व को संतुष्ट करते हैं, उनके योगी जीवन का प्रभाव दूसरों पर स्वतः पड़ता है। जैसे साइंस के साधनों का वायुमंडल पर प्रभाव पड़ता है, ऐसे सहज योगी जीवन का भी प्रभाव होता है। सहज योगी जीवन जिसका है वो संतुष्ट भी होगा। योगी जीवन के तीन सर्टिफिकेट हैं। एक स्व से संतुष्ट, मैं अपने आप से संतुष्ट रहूं, दूसरा बाप से संतुष्ट, और तीसरा एक स्व संतुष्ट, दूसरा बाप संतुष्ट, और तीसरा लौकिक अलौकिक परिवार संतुष्ट। स्लोगन, स्वराज्य का तिलक, विश्व कल्याण का ताज, और स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले ही राजयोगी है। कितनी सुंदर परिभाषा बाबा ने दी। स्वराज्य का तिलक, विश्व कल्याण का ताज, और स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले ही राजयोगी हैं। आज का अव्यक्त इशारा, आज 9 तारीख है। आज 9 तारीख है। जो दिल से सेवा करते व याद करते हैं, उन्हों को मेहनत कम और संतुष्टता ज्यादा होती है। दिल से सेवा करने वालों को जो याद करते हैं दिल से और सेवा भी करते हैं, उन्हों को मेहनत कम और संतुष्टता ज्यादा होती है। और जो दिल के स्नेह से नहीं याद करते, सिर्फ नॉलेज के आधार पर दिमाग से याद करते व सेवा करते, उन्हों को मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, संतुष्टता कम होती है। क्योंकि दिमाग बहुत लड़ा रहे ना, दिल नहीं है, दिल से संतुष्ट नहीं है, तो ऑटोमेटिकली उनको बहुत दिमाग लड़ाना पड़ता है। चाहे सफलता भी हो जाए तो भी दिल की संतुष्टता कम होगी। यही सोचते रहेंगे, हुआ तो अच्छा लेकिन फिर भी कहते रहेंगे, करते रहेंगे, और दिल वाले सदा संतुष्टता के गीत गाते रहेंगे। जो असंतुष्ट है वो कहेंगे अच्छा तो हुआ, ठीक तो हुआ, लेकिन फिर भी, तो असंतुष्ट है। तो संतुष्टता वाले सदा संतुष्टता के गीत गाते रहेंगे। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो और भी अच्छा होगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। चलो बाबा को याद करेंगे।